देवियों सज्जनों आप सबको नमस्ते। ईशावासी उपनिषद या ईशो उपनिषद की चर्चा में हम लास्ट टाइम उसके आठवें मंत्र की चर्चा कर रहे थे। सपर्यगा छुक्रमकायमव्रणमश्ना विरम शुद्धमपापविद्धम कवीर्मनीषी परिभु स्वयंभूर याथा तथ्यतोर्थान व्यदधाच्छाश्वतीभ्य प्रजाभ्य। वो परमात्मा हमने आधी चर्चा की थी, स वो जो परमात्मा जिसका कोई नाम हो भी तो वो इनसफिशिएंट होगा उसको डिस्क्राइब करने में, इसीलिए जो मोस्टली प्रोनाउन से जाना जाता है वो पर्यगात सब जगह फैला हुआ है, ऑल परवेशिव है, जहां कुछ है वहां भी परमात्मा है, जहां कुछ नहीं है वहां भी परमात्मा है। इस यूनिवर्स के कण कण में, गैलेक्सी में, स्टार्स में, प्लैनेट्स में, प्लैनेट्स में होने वाले हर वो चीज में वो है, पर इवन जहां यूनिवर्स खत्म हो जाता है उसके बियॉन्ड भी वो होता है, वो सब जगह है। और क्योंकि वो सब जगह है ये उसके सारे कॉजेस हैं, रीजन्स है, क्योंकि वो शुक्र है, शुद्ध है, शाइनिंग है, अकाय है, उसमें कोई शरीर नहीं है। शरीर होना ही हमारा लिमिटेशन है। जैसे ही आप एक फॉर्म में आएंगे, आपका शरीर 5 फुट 6 फुट का है, इसी तरह कोई माउंटेन है जो हजारों किलोमीटर से माइल से फैला हुआ उसका बॉडी है, कोई ओशियन है तो हो सकता है वो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स माइल्स में फैला हुआ उसका फॉर्म है, कोई प्लैनेट है हो सकता है बिलियंस ऑफ माइल्स में फैला हुआ फॉर्म हो, कोई स्टार्स हो, सन हो सकता है ट्रिलियन ट्रिलियन ऑफ माइल्स में फैला हुआ उसका शरीर हो, पर उसका एक शरीर होता है, उसका एक फॉर्म होता है, और दैट मेक्स हिम और हर लिमिटेड। कि अगर वो ट्रिलियंस माइल से फैला हुआ है उतना उसका लिमिटेशन है, उसे आगे नहीं जा सकता। तो जैसे ही आप में एक शरीर आ जाता है तो आप लिमिटेड होने लगते हैं, और अनलिमिटेड होने का एक ही कंडीशन है कि यू हैव टू बी बॉडीलेस फॉर्मलेस। ईश्वर अकाय है, शरीर रहित है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है, दोनों साथ नहीं चल सकता। आप कहें नहीं, वो सब जगह भी है और उसका एक फॉर्म भी होता है, फिर वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, क्योंकि उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, नेचुरली उसमें कोई वाउंड्स भी नहीं है। यहां वाउंड्स का अर्थ नहीं है कि कोई घाव हो, कोई घाय हो। हमारे शरीर में 5 द्वार 9 द्वार है, 9 डोर्स हैं ना, जहां से डोर का क्या काम होता है, बाहर और अंदर से जो आपको कनेक्ट करे, आप बाहर से अंदर जा सके, अंदर से बाहर आ सके, ये जो कम्युनिकेशन की जो रास्ता है उसे आप डोर्स कहते हैं। आपके शरीर के अंदर 9 शरीर द्वार होते हैं जिससे आप बाहरी दुनिया से कनेक्ट करते हैं। आपके आंखें हैं, कान है, नाक है, मुंह है, रोम छिद्र है, तो इस तरह के 9 द्वार है। ये कहां होता है? नेचुरली जिसमें कोई बॉडी होता है, कोई फॉर्म होता है, क्योंकि ईश्वर में शरीर हो नहीं सकता, इसलिए उसमें कोई इंद्रियां भी नहीं हो सकती है जानने समझने के लिए। हम बिना इंद्रियों के चीजों को जान नहीं सकते, पर वो जान सकता है बिना इंद्रियों के, क्योंकि वो ओमनिपोटेंट है, उसमें इतना सामर्थ्य है, इतनी पोटेंशियल है कि वो बिना इंद्रियों के भी चीजों को जान सकता है। उसको सर्वाइव के लिए उसके अंदर कोई नर्व सिस्टम की जरूरत नहीं है, जैसे हमारे अंदर एक नर्व सिस्टम होता है, ऐसा नहीं कि आपके अंदर सिर्फ होता है, इवन जो मैटेरियल चीज है उनके अंदर भी होता है। आप एक कंप्यूटर चलाते हैं, एक टीवी चलता है, आपके फ्रिज चलता है, उसके अंदर दुनिया भर के वायरिंग आपकी होती रहती है। वो जो वायरिंग सब क्या है, वो उसके अपने नर्व सिस्टम है, कहां से कौन सी इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, कहां से और क्या होगा, पूरी तरह सिस्टम बना होता है। जैसे आपकी बॉडी सिस्टम है, आपकी बॉडी क्या है, वो मैटेरियल चीजें हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, और आपकी भी इलेक्ट्रिसिटी आपकी आत्मा है जिसके कारण सब फंक्शन करता है। पर परमात्मा ना कोई फ्रीज टाइप का है ना हमारे टाइप का है, जिसके अंदर कोई सिवेयर की कोई नस की नाड़ियों की उसकी जरूरत नहीं होती है। वो शुद्ध है, शुद्ध वैसे ही जैसा हम शुद्ध होते हैं या प्योर होते हैं वैसा नहीं। जैसा हमारा घर साफ है वैसा साफ नहीं है, जैसे हमारे कपड़े साफ हैं वैसा साफ नहीं है, जैसा हमारा शरीर साफ है उसमें क्या फर्क पड़ता है। हमारे शरीर भी तो बड़ा साफ रहता है, हम बहुत सारे लोग दोनों टाइम नहाते हैं, कोई एक टाइम नहाता है, बड़े ध्यान रखते हैं, कपड़ों की सफाई ध्यान रखते हैं, घर की सफाई करते हैं, हर चीज की सफाई करते हैं। पर जो सब साफ हमारा शरीर है या हमारे कपड़े हैं घर हैं वो चीजें साफ है, उसमें और आत्मा की सफाई में दो अंतर होता है। एक अंतर होता है कि एक तो जो बाय नेचर हम गंदा है और हम उसको साफ करने की कोशिश करते हैं, कंटिन्यूअसली एफर्ट करते रहते हैं जिससे कि साफ बना रहे। एक दिन आपने छोड़ दिया, दो दिन छोड़ दिया तो शरीर से बदबू आने लगता है, कपड़े से स्मेल आने लगता है, घर गंदा होने लगता है, धूल जमा होने लगता है। तो मतलब है कि हमारा घर हो, हमारा शरीर हो, हमारा मन हो, ये बाय नेचर गंदा होता है। आपको बार बार क्लीन करना पड़ता है टू मेक श्योर कि क्लीन बना रहे। आत्मा ठीक अपोजिट है, ये बाय नेचर शुद्ध है, पर बाहरी दुनिया के कनेक्शन के कारण उसमें अशुद्धियां जम जाती है। आत्मा अशुद्ध नहीं होता, आत्मा के ऊपर धूल जम जाता है जो हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, उसको झाड़ फूंक करने की जरूरत है। पर परमात्मा एब्सोल्युटली प्योर है, ना कोई उसको इम्प्योर बना सकता है, ना टेम्परेरीली ना परमानेंटली। उसकी प्योरिटी एब्सोल्युट है, नेचुरल है, हर इटर्नल है, पर हमारे में बदलता रहता। इसको समझने के लिए ऐसे समझे, हमारे यहां दो शब्द यूज होता है, एक एक्सीडेंटल है जो किसी के साथ कनेक्ट होने पर आपके अंदर कोई चेंजेस आता है, दूसरा होता है जो इनहेरेंट होता है जो आपके अंदर है। बहुत सारे गुण आपके हैं जो इनहेरेंट है और बहुत सारे दोष या और चीजें हैं जो आपने दुनिया से सीखा, अक्वायर किया है, कलेक्ट किया है। जो भी आपने कलेक्ट किया है बाहरी दुनिया से वो तो टेम्पररी है, जो आपका इनहेरेंट है आपने इसको अगर रिकॉग्नाइज नहीं किया, आपकी अवेयरनेस नहीं है, उसमें काफी सारे धूल जमा दिया है। सिर्फ आपको इतना करना है कि आपको थोड़े बहुत अवेयरनेस लाना है कि मेरे अंदर क्या क्या अच्छे गुण है जो इनहेरेंट है। आपके बच्चों में भी आप कभी कभी ऑब्जर्व करते हैं, आपके बच्चों को बोलना नहीं पड़ता, सिखाना नहीं पड़ता, कुछ चीजें ऐसे हैं। कुछ बच्चे बहुत चीजों में बहुत अच्छे गुण लेते हैं और ठीक उनके इवन उनके सिबलिंग होते हैं, उनके अपने भाई बहन होते हैं, वो गुण उनमें नहीं होता है, उनको ट्रेंड करना पड़ता है। कोई बच्चा है कि भाई नेचर वो हेल्पिंग नेचर का होता है, किसी को भी हेल्प करने को तैयार हो जाता है, अपने दोस्तों को खिलौने बांट देता है, खाना शेयर करना चाहता है, सब कुछ उसको बताना नहीं पड़ता है, वो इनहेरेंट नेचर है। और वही बच्चा हो सकता है उसका अपना भाई और बहन हो, ठीक अपोजिट हो, वो किसी को अगर देना आप उस वो तो शेयर करता ही नहीं है, अगर आपके मां बाप भी उसके सामने शेयर करें उसको लगता है वेस्ट ऑफ मनी है, अब क्यों उसको देते हो, तो वेस्ट हो रहा है। फिर आप उसको ट्रेंड करते हो कि नहीं ऐसा नहीं बोलते, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, ये बुरा है। तो एक बच्चे में वो क्वालिटी इनहेरेंट आया, दूसरे में आपने उसको अडॉप्ट कराने की कोशिश कराते हैं। नेचुरली जो अच्छी चीजें हैं वो हमें सिखाने की जरूरत है, अगर बच्चे के अंदर बाय नेचर नहीं आता है। पर हमेशा उसमें एक प्रॉब्लम रहता है कि कभी भी उसमें एक छेद पड़ सकता है, कभी भी व्यक्ति बदल सकता है, आप कितना भी कोशिश करिए। इसीलिए हमारे शास्त्रकार कहते हैं जो भी अच्छा काम है ना उसको रोज करो, करो मेंटली भी अच्छा, उसके प्रति भाव इंटेंशन भी अच्छा रखो। रोज क्यों? क्योंकि इतना हैबिट बनाओ, इतना करो, इतने करते रहो कि इट शुड बी पार्ट ऑफ योर नेचर। ऑल्दो ये सेकेंड नेचर है क्योंकि इसने आपने इसको अडॉप्ट किया है, पर इतना ज्यादा करो, कंस्टेंटली करो, विदाउट एनी ब्रेक करो, इट शुड बी योर नेचर। जब तक वो नेचर में कन्वर्ट होना, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, डेफिनेटली इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट ये इम्पॉसिबल नहीं है। आप चीजों को अडॉप्ट करके भी अपना नेचर बना सकते हैं, पर ओनली थिंग इज कि आपको श्रद्धा के साथ कंस्टेंटली उन चीजों पर काम करना पड़ता है। आप लैंग्वेज बोलते ये इनहेरेंट नहीं होता है, ये हम बाहरी दुनिया से सीखते हैं। इसीलिए जो चीजें आप बाहरी दुनिया से सीखते हैं ना, उसको अगर परखना चाहते हैं कि कौन सा मेरे अंदर इम्पोर्टेड है, बाहर से लाया गया है, कौन सा मेरे इनहेरेंट है, इसको कभी आप ट्राई करना चाहें, एक ही चीज है। जिन चीजों को ना करने पर भी आप सर्वाइव कर सकते हैं, थोड़ी बहुत मुश्किल थोड़ी दिन के बाद होगा, उसके बाद सर्वाइव कर सकते हैं, वो सब आपका इनहेरेंट है। ये सब बाहर से आया हुआ, जिनके बिना आप रुक रह नहीं सकते, वो सब इनहेरेंट है। आप 24 घंटे बोल नहीं सकते, दो चार घंटे बोलेंगे तो थक जाएंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत बोलते हैं, पटर 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 करते रहते हैं, पर तब भी उनको कभी ना कभी चुप रहना पड़ता है। पर मजेदार बात है कि आप चुप होकर के पूरी जिंदगी रह सकते हैं, कोई थकावट नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अच्छी बात तो यह है, थोड़े प्रैक्टिकल नोट पर, लाइफ में हमारे जो रिलेशनशिप में ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि हर चीज के लिए हम बोलने को तैयार होते हैं। सामने वाले ने दो लाइन बोला नहीं कि हमारे पास चार लाइन तैयार रहता है, फिर झगड़ा होता है मियां बीवी में, पति पत्नी में, फिर झगड़ा होता है पेरेंट्स और बच्चों में, फिर झगड़ा होता है ऑफिस में। अगर ये थोड़ा सा ट्रिक हम सीख लें कि लाइफ में ज्यादातर समय में साइलेंट रहूंगा, आप देखेंगे वो छोड़िए ईश्वर प्राप्ति होगी नहीं होगी, आपके अंदर की आत्मा जगेगी नहीं जगेगी, इतना जरूर होगा कि पति और पत्नी में रिश्ते अच्छे बन जाएंगे, आपके ऑफिस के रिश्ते भी सुधर जाएंगे, काम के फील्ड के रिश्ते सुधर जाएंगे, काम बोला करें। और अगर काम नहीं बोल सकते, जहां लगता है कि मामला गर्म है वहां चुप हो जाए। साइलेंस का अपना बहुत फायदा है, बोलने के बड़े नुकसान है। कुछ भी मत बोले, कुछ नहीं नुकसान होने वाला है, पर बोलते ही सुख दुख दोने आ जाएंगे, पर चुप रहेंगे कभी नहीं नुकसान होने वाला है, क्योंकि साइलेंस आपका नेचर है। लैंग्वेज तो अडॉप्ट करते हैं हम, झूठ बोलना अडॉप्ट करते हैं हम, सोसाइटी से लेते हैं। सच्चाई ऑनेस्टी हमारा इनहेरेंट है, इसीलिए आप झूठ 24 घंटे बोल नहीं सकते, काम निकालने के लिए थोड़ी बहुत बोल सकते हैं। कोई लोग जिसको आप कहते हैं बड़ा झूठा है, झूठा का मतलब सिर्फ है कि वो थोड़ा ज्यादा बोलता है रिलेटिवली आपसे। आप 100 में 4 बोलते हैं, वो 100 में से 40 बोलता है, 24 घंटे झूठ बोल ही नहीं सकता। मतलब चोर भी जो चोरी करता है ना, इवन जो डिसऑनेस्ट, जो ठग है, बदमाश है, जो चीट करते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ऑनेस्टी होनी पड़ती है अपने जॉब को बनाए रखने के लिए। वो चोरी करने के लिए भी दे हैव टू बी ऑनेस्ट समवेयर। उनकी जो ग्रुप बनता है, वो ग्रुप में अगर उनकी डिसऑनेस्टी आई, ट्रस्ट में अगर ब्रीच हुआ, वो ग्रुप टूट जाएगा। भाई तुमने ज्यादा ले लिया, शेयर ले लिया, मुझे छुपा लिया। दे हैव टू बी ऑनेस्ट इन देयर ग्रुप। इवन चोर बनने के लिए भी आपको कहीं ऑनेस्ट बनना पड़ता है। तो आप डिसऑनेस्टी से पूरी लाइफ क्या 24 घंटे भी जी नहीं सकते, पर आप ऑनेस्टी रखें पूरी लाइफ चल सकते हैं। आप गुस्सा 24 घंटे कर नहीं सकते, मतलब गुस्सा होने का जो नुकसान है वो तो अलग है, पर कर भी नहीं सकते, आप चाह कर भी नहीं कर सकते, पर आप शांत होकर पूरी जिंदगी बिता सकते हैं। और जितने इनहेरेंट चीजें हैं इन सबको अगर हम थोड़ा पॉलिश करें तो वैसे तो लाइफ सिर्फ न केवल सुख मिलता है, लाइफ भी लंबी होती है। आप गुस्सा कम करें, ऑनेस्ट ज्यादा रहें, साइलेंस मोस्ट ऑफ टाइम नहीं तो कम से कम कुछ समय साइलेंट रहें, अब देखिए आपकी लाइफ स्पैन बढ़ेगा। इनहेरेंट चीजों को पॉलिश नॉरिश करने की जरूरत है, यह स्वाभाविक है, नेचुरल है। पर जो शुद्धता है हमारे शरीर की मन की, वो नेचुरल नहीं है, हमें उसको एडॉप्ट करना पड़ता है। इसीलिए बॉडी को रोज साफ करो, कपड़े को रोज साफ करो, घर की रोज साफ करो, पर आत्मा बाय नेचर शुद्ध है, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों को लगता होगा कि कुछ लोगों में अच्छे गुण बहुत होते हैं पर छुप जाते हैं, बिकॉज ऑफ द इकोसिस्टम, ऐसे माहौल में रहते होंगे, इस तरह के एटमॉस्फेयर में रहते होंगे जहां खराब चीजों का माहौल ज्यादा है, और धीरे धीरे हम उससे आदत पड़ जाती है और आपको वापस जाना है अच्छी चीजों में। ओनली थिंग यू नीड टू डू इट, आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, और जब भी आप कुछ करें बस बी अवेयर, उसके ऊपर जो धूल है उसको झाड़ने की जरूरत है। आपको ऑनेस्ट बनने की जरूरत नहीं, एवरीवन इज बाय नेचर ऑनेस्ट। जब भी हमारी ऑनेस्टी में कुछ गड़बड़ाहट आता है, बी अवेयर कि मेरी ऑनेस्टी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। जैसे ही आपके अवेयरनेस आने लगेगा, आपके धूल झड़ने लगेंगे, आपको और कुछ नहीं करना, बी अवेयर। गुस्सा आ रहा है तो बी अवेयर कि अच्छा मुझे गुस्सा आ रहा है, आप देखेंगे आपके गुस्से में अपने आप कंट्रोल होने लगेगा। हो सकता है पहले दिन ना हो, दूसरे दिन ना हो, चौथे दिन ना हो, पर ग्रेजुअली होने लगेगा। ओनली थिंग इज वो अवेयरनेस आपके अंदर आना चाहिए, इट्स नॉट पार्ट ऑफ माई लाइफ, सो आई हैव टू बी स्टे अवे फ्रॉम दैट। पर आत्मा शुद्ध है, उसमें जो मलिनता जो गंदगी दिखता है वो अक्यूर्ड है, वो लाया गया है पाप विद्धम। इसीलिए आत्मा में किसी तरह का कोई पाप, जब हम कहते हैं पाप, पुण्य भी साथ में होता है, अगर किसी में पाप नहीं है आत्मा में तो उसमें पुण्य भी नहीं है। हमारे में पाप पुण्य दोनों साथ चलते हैं, अच्छा काम करो तो पुण्य मिलता है, बुरा काम करो तो पाप मिलता है। पर एक और स्टेज है, आप कुछ भी करो ना आपको पाप मिलेगा ना पुण्य मिलेगा, वो क्या, कुछ भी करो डिटैच्ड होकर करो, आईने से हटके करो कि मैं कर रहा हूं, जो कुछ भी हो सब कुछ ईश्वर के द्वारा हो रहा है, अपने आप को मीडियम समझ लो, मानना बोलना नहीं, वो रियलाइजेशन हो जाए फिर क्या होगा, आप कुछ भी कर रहे हैं उसकी कोई मेमोरी जाएगी नहीं, उसे अटैचमेंट नहीं होगा। जब अटैचमेंट नहीं होता है ना, उस अच्छे कर्म का फल आपको पुण्य के रूप में मिलता है ना बुरे कर्म का फल आपको पाप के रूप में मिलता है, तो आप शुद्ध होते हैं। वो जो शुद्धता है वो आपको आगे जाकर मुक्ति के लिए हेल्प करता है, फ्रीडम के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए हेल्प करता है। सिंपल सी बात है, लाइफ में कोई भी व्यक्ति कभी इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता जो किसी से अटैच्ड है। इसलिए परिवार वाले लोगों को कहते हैं कि आप सन्यासी मत बन पाओ, मां बनो, क्योंकि जब आप किसी चीज से अटैच्ड होते हो तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है उसके लिए, कुछ चीजें नहीं करना पड़ता है समझ जान करके भी, ये करने लायक हो तो भी नहीं करना पड़ता है, टू प्रोटेक्ट आर नॉट सेव आवर दोज बिलव जिनको हम प्यार करते हैं, सो कॉल्ड। तो आप जब डिटैच्ड हो जाते हैं, ना पाप है ना पुण्य है, दोनों से मुक्त होते हैं। परमात्मा या आत्मा पाप रहित है, मतलब पाप पुण्य दोनों से रहित है, वहां कोई इमोशंस या अटैचमेंट से ऊपर होता है, वो कवि है कवि जानते हिंदी में कहते हैं कवि, मतलब सिंपल ट्रांसलेशन आप करते हैं, पोइट जो लिखता है पोएम्स लिखते हैं उसको कवि कहते हैं। कालिदास है, माघ है, प्रेमचंद है हिंदी में, शेक्सपियर है, गेते है, अलग अलग बहुत सारे लाखों हजारों पोएट्स होते हैं। पोएट्स और फिलोसोफर एक ही कैटेगरी में आते हैं, दोनों के अंदर वो इंस्टिंक्ट थॉट होता है, तो एक कविता के रूप में एक्सप्रेस करता है, एक फिलोसॉफिकल वे में उसको एक्सप्रेस करता है। कवि को कवि क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो आम आदमी जो सोचता है कवि उसे बेअंड सोचता है। ईश्वर को भी कवि कहते हैं, कवि का लिटरेरी मीनिंग होता है ए पर्सन हु कैन सी योर विजन फ्यूचर, जो लंबे चीजों को 5000 साल पहले बाद, 500 साल बाद, 100 साल बाद क्या होना है नहीं होना है उसको जो आज से समझ ले, जान ले। ईश्वर भी कवि है क्योंकि वो ओमनीसिएंट है, ही कैन सी एनीथिंग हैपनिंग इन प्रेजेंट, हैपेंड इन पास्ट और इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि हमारी शरीर है, लिमिटेड है, इंद्रियों से हम ज्ञान करते हैं, तो हमारे लिए टाइम जो है हमारे एग्जिस्टेंस के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से हमने उसको बांटा है। ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है, दैट इज 2018, अभी 2019 है, 2020 आने वाला है, अभी जनवरी है, फरवरी आएगी, अभी दिसंबर बीता, तो ये सब हमारा अपना क्रिएशन है, हमारी सुविधा के लिए, कन्वीनियंस के लिए। टाइम ना पास्ट होता है, ना प्रेजेंट होता है, ना फ्यूचर होता है, ना 2018 होता है, ना 19 होता है, ना जनवरी होता है, ना फरवरी होता है, टाइम टू टाइम ऑलवेज सेम। क्योंकि हम मरते हैं, पैदा होते हैं, हमारा लिमिटेशन है, आगे और पीछे है, तो हम अपनी चीजों को ठीक से माइंड में, मेमोरी में क्लासिफाई करने के लिए हमने उसको डिविजन्स बना रखे हैं, ईयर्स में, मंथ में, वीक में, एक्सेट्रा। पर टाइम और स्पेस उनका कोई डिविजन हो नहीं सकता, तो टाइम एक ही है। और ईश्वर के लिए तो, क्योंकि ईश्वर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से ऊपर है, उसके लिए भी टाइम एक ही है। जो आपके लिए पास्ट है ईश्वर के लिए वो भी प्रेजेंट है, जो तुम्हारे लिए फ्यूचर है वो भी ईश्वर के लिए प्रेजेंट है, जो तुम्हारे लिए प्रेजेंट है उसके लिए प्रेजेंट है। तुम्हारा आयु 100 साल का, तुम कहते हो आफ्टर डेथ बिफोर बर्थ, जो 5000 साल का होगा उसके लिए बिफोर बर्थ भी बड़ा लंबा है, 4000 साल पहले की बात उसके लिए प्रेजेंट है। तुम कहोगे आफ्टर डेथ, तुम 5000 साल बाद मरोगे, पर जो 100 साल के बाद मरता है उसके लिए तो बहुत बड़ा फ्यूचर है। पर ईश्वर जो हमेशा रहने वाला, उसके लिए पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर से ऊपर है, वो सब कुछ जानता है। नॉट केवल दैट, वो मनीषी है, हमारे और आपके सबके मन को कंट्रोल करने वाला। स्वामी दयानंद लिखते हैं, जब भी आप कुछ अच्छा या बुरा करते हो परमात्मा आपको प्रेरणा देता है, वो आपको इंस्पायर करता है, इसको करो इसको मत करो। बोले कैसे? बोले जब भी आप कुछ अच्छा काम या बुरा काम करते हो आपके अंदर से एक इंस्टिंक्ट होता है, आपके अंदर से एक फीलिंग, सेंस क्रिएट होता है। अब आपको अगर लगता है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, वो अंदर से आपको वो फीलिंग आएगा, आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। आप डिलेमा में हो, समझ नहीं पा रहे हो कि मैं करूं ना करूं, तब आप ब्रेन से, हार्ट की सुनो, दिल को सुनो, अंदर आप फील करेंगे तो स्वामी जी कहते हैं वो ईश्वर की प्रेरणा होती है कि ये करो या मत। जब भी आप कोई अच्छा काम करेंगे आपको पता नहीं चलता मैं सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं, तो कहते हैं अंदर से अगर आपको उसमें लाइट फीलिंग हो, अच्छा फीलिंग हो तो गो विद दैट, वो ईश्वर की प्रेरणा होती है। पर प्रॉब्लम है कि हम इतने ज्यादा सोशल और मैटेरियल चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं और इतने जैसे हम पालते हैं, धीरे धीरे हमारे के ऊपर इतने लेयर्स पड़ जाते हैं, हमारी वो जो इंस्टिंक्ट है वो दब जाता है कुछ सालों के बाद, और हम अपने अंदर की आवाज बहुत कम सुन पाते हैं क्योंकि हम दुनिया की शोर में इतने डूबे हुए रहते हैं। और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाता है, हम लोग इतने ज्यादा हमेशा किसी ना किसी के साथ घिरे रहने की आदत पड़ चुकी है, अकेले रहने में डर लगता है। अकेले रहना जब कहता हूं, हम अपने आर्टिफिशियल चीजों के साथ भी रहने लग गए हैं, मीन्स हमारे गैजेट के साथ, फोन है, आईफोन है, टैबलेट है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, टीवी है, अलग अलग चीजों के साथ अकेले तो रह जाते हैं। कहते हैं मैं अकेले घर में था, अब अकेले नहीं थे, अब किसी इंसान के साथ नहीं थे, पर अभी भी आप बिजी थे। अकेले का मतलब अकेले, कोई नहीं मेरे सिवा। एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी नहीं है, ना कोई फोन है, ना कोई इंटरनेट है, ना कोई लैपटॉप है, ना कोई टीवी है। अब धीरे धीरे ये खत्म हो रहा है अकेले रहने के, इससे बच्चों में भी डिप्रेशन आने लगा है, क्योंकि बचपन से वो जो एक नेचुरल ट्रेनिंग होती थी अकेले रहने की, बच्चे जल्दी बोर हो जाते हैं। वो बच्चे उनके जिसके ग्रैंड पेरेंट्स के एज के लोग बोर हो जाते हो एक घंटे अकेले बैठने में, उन बच्चों की क्या हालत होगी। डिप्रेशन की बीमारी इसीलिए बढ़ती है, इसीलिए बच्चे से बड़े तक मेंटल डिजीज से बढ़ते जाते हैं, क्योंकि हम अकेले रहने की अब आदत रही नहीं है। हमें कोई चाहिए, साथी चाहिए, और ये एक बीमारी है। मतलब साथी जरूरी है, सोशलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट वी हैव टू लर्न टू बी अलोन। वो इसीलिए कि वो समय होता है जब आप अपने आप को समझते हो। दिस इज द टाइम टू फील योर सेल्फ, टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, टू गो इनसाइड योर सेल्फ, क्योंकि आप वो होता नहीं है, इसलिए पता ही नहीं चलता है कि मेरे अंदर क्या चलता है। मुझे दुनिया का खबर है, एयरपोर्ट में क्या हो रहा है शटडाउन के कारण, ट्रंप ने कौन सा स्टेटमेंट दिया, पड़ोसी में क्या हुआ, किसने क्या बोला, पर मुझे ये खबर नहीं कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। मैं टीवी में शो देखता हूं, मुझे पता लगता है शो में क्या हो रहा है, पर शो देखते समय मेरे अंदर क्या चल रहा है बहुत कम लोगों को बहुत कम टाइम पता चलता है। कभी यही एक्सपेरिमेंट आज करिए। अब खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, थोड़ा अवेयरनेस लाइए कि मेरे अंदर उस समय क्या चल रहा है। आप कोई सीन देख रहे हैं, कोई एक्शन मूवी है, कोई लव रोमांटिक है, कोई सस्पेंस है, कुछ भी आप देख रहे हैं टीवी में, देख कोई मैच देख रहे हैं, कोई गेम देख रहे हैं, देखते समय अचानक दिमाग में लगे कि अच्छा मेरे अंदर क्या चल रहा है, उसको देखते हुए। ये बहुत जरूरी है वो अवेयरनेस लाना, क्योंकि हमें अपने बारे में कुछ नहीं पता, बहुत कुछ चल रहा है और मोस्ट ऑफ बुरे ही चल रहे हैं आजकल। अब ज्यादा दुखों का कारण यही है, वो बीमारी हो या कुछ भी हो, वी आर एब्सोल्युटली वी हैव जीरो नॉलेज अबाउट आवर सेल्फ, व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड अस व्हाइल वी आर डूइंग समथिंग और डीलिंग विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड। तो ये बड़ा जरूरी है, पर ईश्वर हमारे अंदर भी बाहर भी है, न केवल वो, हमें वो कंट्रोल भी करता है, हमें वो गाइड भी करता है, पर वो गाइडेंस उस पर असर करता है ना जो सुनने को तैयार। आज तो बच्चे भी हमारे गाइडेंस को सुनने को तैयार नहीं है, बच्चे सोचते हैं हम सब जानते हैं, तो हम कहां भगवान के सुनने वाले हैं। परिभूहु, ईश्वर सब जगह है, मेरे अंदर भी है, बाहर भी है, दैट्स ओके, पर इट्स बियॉन्ड आवर ग्रास्पिंग पावर। बड़ा मुश्किल चीज है जी, कॉन्ट्रडिक्टरी है, मेरे अंदर भी है और मेरे बाहर भी है, मेरे कण कण में है, पर प्रॉब्लम है कि मैं उसको पकड़ नहीं सकता, मैं उसको देख नहीं सकता, मैं उसको जान नहीं सकता। सबसे अगर कोई क्लोजेस्ट है, सबसे नियरेस्ट कोई है मेरा, वो ईश्वर है। पर वो पकड़ से बाहर है, क्योंकि वो ट्रांसेंडेंट है। उसको जानने की जो तरीका है वो यही है कि आप शांत हो, अकेले हो। मेंटली फिजिकली तो फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप है कि मेंटली आप माइंड को बिल्कुल शांत करो, निर्मल करो, तब आप उसको थोड़ा साउंड कम करें, तब आप उसको फील कर सकते हैं। जब आपके मन के सामने कोई मनपसंद चीजें हो, बाकी चीजें थोड़े ही दिखता है। आप पड़ोसी के बच्चे को कितना भी प्यार करते हो, यकीनन जरूर आप प्यार करते हो पड़ोसी के बच्चे से, अपने बच्चे जैसा बोलते भी हो, यू आर जस्ट लाइक माई सन और डॉटर। पर बात है कि कॉलेज से 3 साल के बाद, 2 साल के बाद आपका बच्चा आया हुआ है, और उसी नेबरहुड का बच्चा तभी आ जाता है। आपको थोड़े ही दिखेगा वो नेबरहुड का बच्चा उस समय, क्योंकि आपका माइंड इस समय पूरी तरह ऑक्यूपाइड है आपके जिससे आप ज्यादा प्यार करते हो। हमारे माइंड्स ने अपनी प्रायोरिटीज बना रखा है, वो प्रायोरिटी में इतने ज्यादा हम फंसे हुए हैं। ईश्वर कितना भी क्लोज होता है नेबरहुड के बच्चे की तरह, वो हमारे प्रायोरिटी में ऑलवेज इन सेकेंड है। इवन $5 और ईश्वर के बीच में दोनों सामने खड़े हो जाए ना, 90% लोग शायद $5 को प्रिफरेंस करेंगे ईश्वर को सेकेंड। पहले पैसा ले लो, बाद में तुमसे मिल लेंगे। बोलने के लिए तो हम बोलते हैं, भगवान कहां मिलता है, किसने देखा है, मैं क्यों दिखेगा तुम्हें, कभी चाहिए तुम्हें मैं क्यों तुम्हारे घर आऊं भाई, जब तुम्हें मुझे जरूरत ही नहीं है। जी आप तो मिलते नहीं हो, क्यों मिलूंगा जब आप मुझे मिलना नहीं चाहते हो। जिनसे मिलना चाहते हो उसे रोज बात कर लेते हो 4 बार। तो ईश्वर से कभी मिलने की इच्छा बने तो जरूर मिलेंगे, कोई सवाल नहीं उठता है ना मिलने का। पर हम जनरली थोड़े हिपोक्रेसी करते हैं ईश्वर के बारे में, हम अपने काम में बिजी रहते हैं। कोई बोले ईश्वर के बारे में कहां है, ईश्वर कभी कोई देखा है, वे क्यों देखेगा। प्रायोरिटी फिक्स करो ना, फिर पता चलेगा। वो ट्रांसेंडेंट है, बियॉन्ड आवर सेंसुअल लिमिटेशन है, और जो इंटरेस्टिंग है वो स्वयंभू है। स्वयंभू का अर्थ होता है सेल्फ मेड, सेल्फ एग्जिस्टेंट। मेड तो हो नहीं सकता, मेड के लिए आपको कुछ बनाना पड़ता है, मेकिंग। मतलब आप रोटी बनाते हो ना, रोटी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ कंबिनेशन करना पड़ता है, आटा, पानी, गरम मतलब आग, इन सब के कंबिनेशन करके एक प्रॉपर इंटेलेक्ट यूज करेंगे तो एक रोटी बनती है। अब एक घर बनाते हैं, वही एक कंबिनेशन चाहिए, सीमेंट है, वुड्स है, टाइल्स है, हजारों चीजों का कंबिनेशन विथ एक प्रॉपर इंटेलेक्ट चाहिए जो इसको एक फॉर्म दे सके। तो कोई भी चीज बनता है, एनीथिंग विच इज मेड और क्रिएटेड, कंबिनेशन। ईश्वर आप कहेंगे हमारा क्या कॉम्बिनेशन है, सत्व रज गुण तमो से बना हुआ ये संसार है, पंच तन्मात्रा से बना हुआ संसार है। पर आत्मा जो है सेल्फ क्रिएटेड है, उसका कोई क्रिएटर नहीं, ना उसका कोई मैटेरियल कॉज है, ना कोई क्रिएटर है। ये क्या मतलब होता है, कोई भी चीज बना होता है ना, दो चीजें उसकी जरूरत पड़ती है। मतलब आप रोटी बनाएंगे, उसके मटेरियल चीजें क्या है, आपको आटा चाहिए, मैदा चाहिए, पानी चाहिए, आग चाहिए, इनसे बनेगा। पर खाली आटा पानी रख देने से नहीं बनता है, एक बनाने वाला चाहिए। ये दुनिया किसी मटेरियल चीजों से बना हुआ है, वो स्टार्स हो, प्लैनेट्स हो, प्लैनेट्स में रहने वाले हजारों चीजें हो, समुन्दर हो, हवा हो, पानी हो, माउंटेन हो, पेड़ हो, पौधा हो, हमारा शरीर हो, कुछ भी हो, चीजों से बना है।
फिर बनाने वाला कोई है, पर आत्मा को कोई बनाने वाला नहीं है, वो सेल्फ क्रिएटेड है, ना कोई इसमें मैटर इन्वॉल्व है, ना कोई बनाने वाला इतमन से। सो रूल है कि जो क्रिएटेड होता है इट हैज टू बी डिस्ट्रॉयड। ये मतलब मेरा रूल नहीं है, ना अमेरिकन रूल है, ये रूल ऑफ नेचर है, ये नेचर का लॉ है। कोई भी चीज बना है वो टूटेगा, कोई भी चीज यूनाइटेड है इट हैज टू बी सेपरेटेड। कोई भी यूनाइटेड चीजें परमानेंट हो ही नहीं सकता, उसको टूटना पड़ता ही पड़ता है, बिखरना पड़ता ही पड़ता है। उस बिखरने का नाम है मृत्यु। शरीर और आत्मा से बना हुआ जीवन है, लाइफ है, तो लाइफ इटसेल्फ नथिंग, इट्स अ कॉम्बिनेशन। शरीर और आत्मा इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, यूनाइटेड है, यूनिटी है, तो सेपरेट तो होना ही है। जैसे ही सेपरेट होते आप कहते मर गया, डेथ हो गया, दैट्स इट। तो जो भी चीज पैदा होता है उसका नष्ट होना पक्का है, और जो पैदा नहीं होता है डेफिनेटली, तो वाइस वर्सा वो नष्ट होता ही नहीं है, क्योंकि आत्मा कभी बनता नहीं है, इसीलिए वो नष्ट भी नहीं होता है। तो द थिंग दैट कैन बी मेड डेफिनेटली विल डाय, एंड दैट विच कैन बी मैन्युफैक्चर्ड डेफिनेटली विल बी डिस्ट्रॉयड। इसलिए नो प्रोडक्शन, कोई भी उत्पादन जो भी पैदा हुआ है, बनाया गया है, वो फैक्ट्री से बने, मां के पेट से बने, नेचर के पेट से बने, कहीं से भी बने, वो एवरलास्टिंग हो ही नहीं सकता। और जो एवरलास्टिंग होगा, एवरलास्टिंग होने का एक ही कंडीशन है, इट शुड नॉट बी मेड, इट शुड नॉट बी द क्रिएशन ऑफ ए कंबाइंड थिंग और यूनाइटेड थिंग। और आत्मा क्योंकि सेल्फ ओरिजिनेटेड है, इसीलिए इनडिस्ट्रक्टिबल है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है ध्यान रखने का। कोई भी चीज बनता है इट हैज टू बी डिस्ट्रॉयड। मतलब इसको आप अपोजिट कर लीजिए, जो भी चीज डिस्ट्रॉय हो सकता है वो परमात्मा या आत्मा हो। आत्मा मतलब आपके इंडिविजुअल सोल, परमा मतलब परमात्मा मीन्स यूनिवर्सल सोल। ये जो भी चीज टूट सकता है, नष्ट हो सकता है, वो परमात्मा आत्मा हो ही नहीं सकता। बॉडी नष्ट होता है क्योंकि एक कॉम्बिनेशन है। साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ, हमने कहा कि हम अब पैदा करने के लिए जो नेचुरल प्रोसीजर है उसको बिना फॉलो करे भी हम पैदा कर सकते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी, ट्यूब के अंदर हम बच्चा पैदा कर लेंगे। तो लोगों ने हल्ला मचाया, देखो अब कहां है ईश्वर, क्या जरूरत है, अब हम इंसान ही बिना नेचुरल प्रोसीजर फॉलो किए, देखो हम तो बोतल में ही बच्चा पैदा कर देते हैं। फिर क्लोनिंग आई, कोई जरूरत नहीं है, को टेस्ट ट्यूब में तो कम से कम मेल और फीमेल के लेना पड़ता है रजोवीर्य, उसको एक प्रॉपर टेम्परेचर में जिस तरह के गर्भ में होता है वो इकोसिस्टम कल्टीवेट क्रिएट किया जाता है, और वहां एक जीव की उत्पत्ति बनाई जाती है। क्लोनिंग में तो वो भी मां मेल और फीमेल के वो लेने रजोवीर्य लेने की भी जरूरत नहीं है। जैसे आप पेड़ों में कलमी करते हैं, एक ब्रांच को काटा, उसमें कुछ गोबर फोबर लगा दिया, थोड़ी दिन के बाद उसमें जड़ रूट आ जाते हैं। ऐसे किसी भी प्राणी के आप शरीर का कोई अंग ले जाओ थोड़ा, उससे फिर एक दूसरा इंसान पैदा कर लो, सक्सेसफुल हुए हैं हम भेड़ पैदा करने में और चूजे में। तो लोगों में हाहाकार मच गया, देखो अब तो ईश्वर और आत्मा की कहां है, आत्मा नहीं, ठीक अपोजिट है। ये जितने भी मॉडर्न साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होते हैं वो इस उपनिषद के वैदिक शास्त्रों के विचारों को ज्यादा जस्टिफाई करते हैं कि तुम एक शरीर बना सकते हो, क्योंकि शरीर इज मेड ऑफ मेटेरियल थिंग्स। आप उस तरह के इकोसिस्टम कल्टीवेट करो जहां आत्मा आ सकती है और एक जीव बन जाता है। वो मां के गर्भ का आप एक आर्टिफिशियल गर्भ क्रिएट करो, वहां भी आ सकता है। आप क्लोनिंग से करो, टेस्ट ट्यूब से करो, मिट्टी से करो, कहीं से भी करो। जब प्रॉपर एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, आत्मा का प्रवेश होता है, तो जीव आता है, प्राणी आने लगता है। आत्मा कल आप क्रिएट नहीं करते हो, आप आत्मा को जीव में कन्वर्ट होने के लिए जो इकोसिस्टम चाहिए आप उस टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हो। आत्मा स्टील अजर है, अमर है, नित्य है, अनमेड है, अनडिस्ट्रॉयड है। अब शरीर का माहौल बना दो, उसमें आत्मा प्रवेश कर जाती हो, मां का गर्भ हो, वो किसी चिड़िया का अंडा हो, कि आपके लैबोरेटरी का कोई टेस्ट ट्यूब हो या क्लोनिंग का कोई प्रॉपर प्रोसीजर हो। आत्मा का प्रवेश के लिए आप इकोसिस्टम कल्टीवेट। आत्मा तो अजर अभी भी है, अमर है, नित्य है। और लास्ट वो जो परमात्मा जिसकी हमने इतने सारे डिस्क्रिप्शन सुने और बहुत ही सुंदर सा पर्यगा चुक्रमकाय लास्ट कहता है, याथा तथ्य तो अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। वो जो ईश्वर जिसकी चर्चा हमने अभी तक लंबे इतने सारे एग्जाम्पल से किया, ही हैज ड्यूली अलॉटेड द थिंग्स इन द प्रॉपर वे अट इट शुड बी टू एवरीवन। जब ह्यूमन बीइंग इस प्लानेट में आया, पहली बार जब इंसान पैदा हुआ, तो उस ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल सर्वाइव करने के लिए जो चीजें चाहिए वो सब पहले आए, तैयार हुआ इस प्लानेट पर, तब हमारी ह्यूमन रेस आई। रैंडमली नहीं कि इंसान को पैदा कर दो खाएंगे, तो इसीलिए पहले प्लांट्स आए, बाकी एनिमल्स आए, पानी आया, ऑक्सीजन बने, तब हमारी सृष्टि हुई। जहां जिसको जैसा जरूरत है, माउंटेन बनने के लिए जो एलिमेंट्स चाहिए, ओशियन बनाने के लिए जो एलिमेंट चाहिए, डेजर्ट्स बनाने के लिए जो, ये सब चीजें बेकार नहीं। आपको लगता होगा कि कितने जगह डेजर्ट पड़े हुए हैं, ये ओशियन क्यों बने हैं, ये माउंटेन्स क्यों है, इस कीड़े का क्या यूज है। पहले हम सोचते थे, 50 साल पहले, 100 साल पहले लोगों को लगता मोस्ट ऑफ चीज आर यूजलेस, क्योंकि हमारे काम में नहीं आते। अब कहते नहीं, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम, everyone has a contribution in the survival of this planet, not only the planet, even ourselves। हमारे जिंदगी के लिए भी वो जो छोटा सा कीड़ा कहीं मिट्टी में चलता है उसका कोई ना कोई इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन होता है। तो ईश्वर ने सब चीज, आपके शरीर बनाया, नाकों से आप सांस लेंगे, आंखें देखने के लिए, कान, कितनी, मतलब अगर ह्यूमन बीइंग ऐसा स्ट्रक्चर बिना किसी पूर्व ज्ञान के, प्रायोर नॉलेज के बनाना शुरू करे, 5000 साल के बाद भी इतना सोफिस्टिकेटेड मशीन बना नहीं सकता। इवन आगे के 5000 साल के साइंस के डेवलपमेंट के बावजूद भी हम इतना स्ट्रक्चर्ड बॉडी नहीं बना सकते, कॉपी करके भी। जिसको जहां जैसा जरूरत है, ईश्वर उन सबको वैसा आज इट इज दिया। और इंटरेस्टिंग है, यथा शाश्वतीभ्य समाभ्य, अनंत कालों से देता आ रहा है। ये यूनिवर्स अकेला नहीं है, जैसे हम मरते हैं, पैदा होते हैं, ये सन भी मरता है, फिर नए स्टार्स आते हैं, ये प्लैनेट्स भी नष्ट होते हैं, यूनिवर्स भी नष्ट होता है, नए यूनिवर्स आते हैं, ये सब साइकिल में चलता रहता है, अनंत काल से अनंत काल तक चलता है। सब आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से स्टेज पर रोल करते हैं, रोल खत्म होते हैं, बैक साइड में चले जाते हैं, फिर नए रोल के साथ आते हैं। इस तरह ये दुनिया का स्टेज चलता रहता है। और उसका जो सूत्रधार है, जो डायरेक्टर या स्क्रिप्ट राइटर है, वो बैकग्राउंड में बैठ करके सारे नट और नटियों को, एक्टर एक्ट्रेस को नचाता नचाते रहते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, पार्ट ऑफ नेचर है। ये ईश्वर का एक सामान्य डिस्क्रिप्शन आपके सामने इस मंत्र ने बड़े सुंदर भाव से रखा, आप लोगों ने ध्यान से सुना। अगले बार एक नए मंत्र के साथ आएंगे यीशु उपनिषद का, और आपको अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।